ओम शांति। कुरान में एक जगह उल्लेख है एक हकीम का, जिसको बाबा मुरलियों में भी याद करते हैं, लुकमान। कुरान में 31st जो चैप्टर है कुरान का, सूरा, वो पूरा इसी नाम से है, सूरा ए लुकमान। ये जो लुकमान था, इसके जीवन में एक बहुत अच्छी चीज का उल्लेख है कि वो जब भी कोई वनस्पति उसे अगर खोजनी होती थी, कोई बीमारी है और उसका इलाज ढूंढना है, तो वो झाड़ों के पास जाता था, पेड़ों के पास जाता था, वनस्पतियों के पास जाता था और उनसे पूछता था, उनसे बात करता था, और वो वनस्पति उससे बात करते थे। वो उसको बताते थे कि हम इस रोग में आपके काम आ सकते हैं, हमारा उपयोग इस रोग में करो। पूरा जो यूनानी सिस्टम है मेडिसिन का, यूनानी सुना होगा, कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें लुकमान ने जो खोजी थी उस पर आधारित है। वो वनस्पति लुकमान से बात करते थे, उनको उसको वो बताते थे कि किस रोग में तुम हमारा प्रयोग करो। बाबा भी मुरलियों में कभी कभी मुरलियों में आया है, साकार मुरलियों में, जैसे लुकमान हकीम। तो वो जो व्यक्ति था, वो कौन सी भाषा से उन वनस्पतियों के साथ बात करता था, क्योंकि उसने जो कुछ ढूंढ के निकाला वो एकदम क्रूड फॉर्म में था। बाद में हजारों कितने सालों के बाद खोजे हुई, साइंटिफिक रिसर्च हुआ, उसके बाद में पता चला कि उसने जो वनस्पति ढूंढी थी, जैसे टीबी के लिए कोई दवाई ढूंढी, तो बाद में पता चला कि वही दवाई जो उसने ढूंढी थी वॉज राइट। तो ये जो व्यक्ति था, इसका प्रकृति के साथ, इसका उन वनस्पतियों के साथ एक वार्तालाप था, और वो इतना गहरा था कि वो जो भाषा थी वो शब्दों की भाषा नहीं थी, उसकी जो भाषा थी वो थी लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, अर्थात भावना की भाषा। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत गहराई में चला जाता है, तब वहां शब्द नहीं रहते, केवल भाषा, भावनाओं की, मौन की, इशारे की, निःशब्द की रहती है। उसके जमाने में बहुत सारे दूसरे भी हकीम थे, परंतु उस जैसा और कोई नहीं था, क्योंकि उसने जो तदात्म्य, जो एक हार्मनी का भाव उसके अंदर था प्रकृति के साथ, वो इतना ज्यादा था कि वो जैसे उसमें डूब गया था। कोई भी चीज में जब हम गहरे डूब जाते हैं, उसके बाद ही वो चीज क्या है हमें समझ में आती है। जब तक हम ऊपर ऊपर से उस चीज को जान रहे, समझ रहे, देख रहे, तब तक वो हमें, तब तक वो उतनी गहराई से समझ में नहीं आती है। एक बार उदाहरण है इसी लुकमान का कि किसी सुल्तान ने उसे बुलाया, क्योंकि जो वहां की रानी थी वो बीमार थी, तो उसने कहा मुझे उसकी नाड़ी देखनी पड़ेगी। पर राजा ने कहा ये तो रिवाज नहीं है, कोई भी पर पुरुष रानी के हाथ को टच नहीं कर सकता। तो उसने कहा ठीक है, पर्दा बीच में डाल दो, मैं हाथ देखूंगा खाली। पर उसको कहा नहीं, फिर भी ये इसकी इजाजत ही नहीं है, इस्लाम में हाथ लगा ही नहीं सकते। तो फिर बात यहां तक आई कि उसने कहा फिर ठीक है, रानी के हाथ को यहां पर एक पतला सा धागा बांध दिया जाए और वो धागा मैं हाथ में पकड़ूंगा। तो भी इतना भी अगर मिल जाए, मुझे मिल जाए तो भी मैं कुछ तो बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत इलाज कर लिया था, कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। पर वो रानी जब ये सुनती है तो उसको ना थोड़ी शरारत सूझती है। वो सोचती है मैं देखूं तो सही में ये है या नहीं। तो उसकी जो बिल्ली होती है ना रानी की, उसकी बिल्ली को वो धागा बांध देती है और वो धागा उधर बाहर निकलता है, बीच में पर्दा। और फिर लुकमान को कहा जाता है कि तुम अब देख के बताओ कि रानी को बीमारी कौन सी है। तो वो देखता है वो, तो उसको थोड़ी गड़बड़ महसूस होती है और उसको समझ में आ जाता है क्या है। तो वो कहता है, राजा कहता है क्या हुआ बताओ। वो कहता है कुछ नहीं, रानी ने जो है ना बहुत सारे चूहे खा लिए है। तो राजा बहुत गुस्सा होता है, ऐसे कैसे, इसको पकड़ लो। तो उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो एक बार कहता है राजा से कि एक बार जरा जाके तो देखो अंदर। तो राजा जब जाकर देखता है तो पाता है कि वो जो धागा है वो बिल्ली के पैर को बांधा हुआ है। फिर राजा खुश होता है और उसको इजाजत दी जाती है कि तुम उसका हाथ नाड़ी देखो और फिर इलाज करो। तो कहा जाता है कि उसकी जो सेंसेस थे, इंद्रिय, वो इतने शार्पन्ड हो गए थे कि वो चीजों को महसूस कर सकता था। उसका उल्लेख कुरान का एक चैप्टर, 31st चैप्टर कुरान का उसके नाम से, सूरा लुकमान, लुकमान अल हकीम। ये व्यक्ति कितना अपने विषय में डूबा हुआ था, ये व्यक्ति कितनी गहराई में गया था, तब जाकर उसको ऐसी चीजों की अनुभूति हुई, ऐसी चीजों का पता चला जो कि बाकी लोग नहीं पता कर सकते थे, नहीं जान पाते थे। ये बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवाओं की, जितनी गहराइयों को छुआ है हमने, शायद उतनी पर्याप्त नहीं है। जितना हम बहुत ज्यादा गहरे चले जाएंगे किसी बात के, तो अपने आप कुछ ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो कि हमने पहले कभी जाने ही नहीं। रोज मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु एक दिन हर एक ने अनुभव किया होगा, अचानक इतना ज्यादा एकाग्रता रहती है और अचानक वो शब्द, वो वाक्य हमें स्पर्श कर जाता है, टच कर जाता है और उसका एक नया अर्थ सामने आता है जो कि पहले कभी नहीं आया था। वाक्य तो हजारों बार सुना वही, पर उस दिन कुछ और हो गया। तो ये ऐसा तब होता है जब हम उस एकाग्र चित्त दशा में रहते हैं, या फिर ऐसी अवस्था में बैठते हैं कि मन पूरा खाली है बाकी चीजों से, एकाग्र है, प्लेन बुद्धि है और समर्पण भाव है। तो वहां पर नए रहस्य प्रकट होते हैं। हम जब छोटे थे तो बचपन में हमको एक कविता थी, वो कविता के एक दो ही लाइन लंबे समय तक हमें याद थे, अभी तक भी याद है। और वो ऐसे थे कि जिन्होंने हमें बाद में, वो कविता हमको कभी मिली नहीं क्योंकि नेट उस समय कुछ था नहीं, वो बचपन में थी स्कूल स्कूल की किताबों में, बस खो गई। पर कुछ कुछ वाक्य उसमें से ऐसे थे कि जिसने हमें बहुत मदद की जीवन में। तो आज हम आज की क्लास उसी के आधार पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उस कविता का नाम था मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। गोताखोर समझते हैं सभी? कौन होता है? डाइवर होता है ना, जो पानी में जाता है उसे गोताखोर कहा जाता है, डाइवर जिसको कहते हैं। वो सब अपना पहनता है और पानी के अंदर जाता है और खोज करता है, उसे गोताखोर कहा जाता है। तो मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। वो कहता है कि मुझे गहराई में जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर से बातें किया करो। बाकी लोगों से वो कह रहा है कि बाकी तुम सब लोग भंवर तट पर बैठ जाओ, किनारे पर बैठ जाओ और भंवर की बातें किया करो, बवंडर कैसे उठता है, साइक्लोन कैसे आता है, वो सब की बातें तुम किया करो, पर मेरे पास वो टाइम नहीं है, मुझे गहरे जाना है। मैं पहला खोजी नहीं अगम भव सागर का। ये जो सागर है इतना बड़ा, इसका मैं पहला खोजी नहीं हूं। अगम अर्थात जहां पर नहीं पहुंचा जाए, इनएक्सेसिबल, जो बहुत डिफिकल्ट है, दुर्गम है, ऐसा ये भव सागर जो है, इसका मैं पहला खोजी नहीं हूं। मुझसे पहले इसको कितनों ने थाहा है, कई सारे आ गए मेरे पहले, उन्होंने इसको थाहा है, जानने की कोशिश की है इस सागर को। तल के मोती खोजे परखे बिखराए, डूबे हैं पर मिट्टी का कौल निभा है। मेरे पहले जितने लोग आए वो सब इस सागर में गए, उन्होंने मोती खोजे परखे और बिखराए और डूब भी गए कुछ कुछ उनमें से, परंतु उन्होंने मिट्टी के साथ जो प्रतिज्ञा की थी उसको निभाया। मैं भी खोजी हूं, परंतु उसमें उन मुझमें उनमें भेद यही, मैं सबसे महंगे उस मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं वो पा लेने की धुन मेरी। तुम मिला सहजो घर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। ये जो लाइन थी, मैं भी खोजी उनमें मुझमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। ये मुझ में और उनमें अंतर है। ये वाक्य हमको बहुत लंबा समय तक और कुछ सालों तक अभी तक याद रहा कि मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस सबसे महंगे गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। इस अध्यात्म जगत में भी हम सब कौन है? स्पिरिचुअल डाइवर्स। हम सब भी आध्यात्मिक गोताखोर है और हमें भी सागर में डूबना है, और जब तक हम नहीं डूबेंगे तब तक हाथ में मोती नहीं आएंगे, वो संतुष्टता भी नहीं होगी। सात समुंदरों का गायन है, सात समुंदर। तो यदि मैं आध्यात्मिक गोताखोर हूं तो मुझे भी ऐसे सात अलग अलग समुंदर है जिसमें डूबना ही पड़ेगा, और जब तक मैं उनमें नहीं डूबता तब तक हीरे मोती मेरे हाथ में नहीं आएंगे। मेरे पहले कितने इस सागर में डूबे हैं, परंतु उनमें और मुझ में फिर भी भेद है, क्योंकि मेरी चाह सबसे महंगे मोती की है। तो वो कौन से सागर है, या कौन से सागर है, समुंदर, सात समुंदर, जिसमें एक ब्राह्मण आत्मा को डूबना चाहिए? सबसे पहला सागर है परमात्म ज्ञान का सागर, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कहो परमात्म मुरलियों का सागर। भगवान का जो ज्ञान है, भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो श्रीमद बिखरी पड़ी है अलग अलग मुरलियों में, जब तक हम उस सागर में डूबते नहीं पूरी तरह से, तब तक इस जीवन में श्रेष्ठता भी नहीं आ सकती। आगे बहुत सुंदर बात कही है, पथ पर तो सब चलते हैं, चलना पड़ता है, परंतु मेरे चरण नया पथ चलना सीखे हैं। तुम हंसो मगर मेरा विश्वास न हारेगा, जीने के अपने अपने अलग तरीके हैं। जिस पथ पर कोई पैर निशानी छोड़ गया, उस पथ पर चलना मेरे मन को रुचा नहीं। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। कोई बोझा अपने सिर पर मत लिया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, कितना विश्वास, कितनी हिम्मत कि नया पथ उसको बनाना है। तो सबसे पहला जो सागर है जिसमें हमें डूबना है वो कौन सा है? परमात्मा ज्ञान का सागर, अर्थात मुरलियों का सागर, अर्थात जो कुछ साकार और अव्यक्त वाणियां हम सुनते हैं उसकी गहराई में जाना। क्लास में गए, या मधुबन में आए, यहां पर बैठे, मुरली सुनी, खाली इससे नहीं होगा। एक एक लाइन, एक एक महावाक्य के गहराई में डूबना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा ये भगवान ने क्यों कहा है, किस अर्थ से कहा है, कितना मैंने उसको समझा है। जब तक ज्ञान की गहराई हमें नहीं आती, और ज्ञान की गहराई के लिए एक नितांत आवश्यक जो चीज है वो है चिंतन, ज्ञान का चिंतन। रोज जो भी मुरली आती है या सुनते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमको निकालने हैं और उस पर सारे दिन भर चिंतन करना है। जैसे आज की मुरली, शैतानी चलन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी रॉयल चलन होनी चाहिए। बाप कितना थोड़ा बोलते हैं, बाप कितना थोड़ा बोलते हैं। क्या हम करें जिससे हमारी वाणी की शक्ति बच जाए, जो व्यर्थ बोल में जा रही है सारे दिन भर। दो एक्सपेरिमेंट हम खुद करके देख सकते हैं। 2 घंटे की सेवा है, वो 2 घंटे की सेवा हमने बहुत बोलते हुए की, और वही सेवा मौन में की। कोई स्थूल सेवा, ज्ञान सुनाने की बात नहीं कर रहे, कोई भी स्थूल सेवा, हम पाएंगे कि जब हम मौन में वही सेवा करते हैं तो हमारे पास अपने आप एक शक्ति का अनुभव होता है, अंदर ही अंदर। जब मौन में वही सेवा की जाती है, एक है बोलते हुए की जाती, क्योंकि बोलते समय आत्मा अभिमानी रहना इतना आसान नहीं है। बोलते समय हमारा ध्यान सामने वाले की तरफ होता है। मौन में जितना आत्माभिमानी रहा जा सकता है, उतना बोलते समय नहीं रहा जा सकता है। ऐसी सेवा जहां पर हम व्यर्थ बोल रहे हैं, इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। ये हमने खाली थोड़ी सी बात बताई आज की मुरली से। जो रॉयल बच्चे होते हैं थोड़ा ही बोलते हैं, बाप कितना थोड़ा बोलते हैं, तुम्हें मीठा बोलना है, ये सारी बातें मुरलियों में आई है। तो जो भी मुरली में आया है वो ऐसे ही छूट कर चला ना जाए, वो हमारी पकड़ में आ जाए कि आज ये था और इसका हमने कितना चिंतन किया, कितना इसके ऊपर मनन किया, कितना इसके ऊपर अध्ययन किया। क्या मैं ऐसा करूं कि इस वाक्य को धारण कर लूं, क्या मैं ऐसा करूं कि ये वाक्य जीवन ही बन जाए। यह है सबसे पहला सागर, परमात्मा ज्ञान सागर में डूबना है। ईश्वरीय जो ज्ञान है उसके लिए अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना पड़ेगा। केवल आए और साकार मुरली सुन ली उससे नहीं होगा, क्योंकि अव्यक्त मुरलियों में जो गहराई है 69 से लेकर तो आगे सारी, उसमें जबरदस्त ज्ञान की गहराई है, और उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमें वो सारी चीजें करना बंद करना पड़ेगा, घूमना फिरना और टाइम वेस्ट करना, बैठकर चर्चाएं करना, मौसम की, संसार की, मीडिया की, पॉलिटिक्स की, क्या संसार में हो रहा है, कितना टाइम जा रहा है। अगर वही टाइम अगर हम किसी एक अव्यक्त मुरली की स्टडी में लगा दे तो कितनी नई पॉइंट आ जाएगी। हो सकता है कि वही पॉइंट अभी कल जो परिस्थिति आने वाली है, कल क्या आने वाला है हमको पता है? किसी को ही नहीं पता। शायद उस परिस्थिति के लिए बाबा ने उस मुरली में एक पॉइंट बोल के रखी है, और वो पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली पॉइंट है कि उस परिस्थिति को से हमें सुरक्षित रखने के लिए वो पॉइंट पर्याप्त है, काफी है, इतनी पावर उस एक पॉइंट में है। परंतु वो तब होगा जब हमें हम टाइम निकालेंगे, वो तब होगा जब हम समय निकालकर उस मुरली का अध्ययन करेंगे। इसके लिए एक नियम ये बना दो, अगर पूरी मुरली नहीं पढ़ सकते तो स्पार्क की बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, एक एक सीरीज है उसकी अलग अलग, एक सीरीज रख दो, ऐसे 2-3 भाग में डिवाइड करो। एक सीरीज हम रात में सोने से पहले पढ़ेंगे, जैसे संकल्प शक्ति, जैसे धर्मराज, पश्चाताप, संकल्प शक्ति, या फिर टीचर से ब्राह्मण परिवार, मेरा बाबा, वारे में ब्राह्मण आत्मा, एक सीरीज जो है हमारी रात की चलेगी, मतलब हम वो रात को सोने से पहले, एक सीरीज जब दोपहर में सोने जाएंगे या आराम करेंगे वो बेड के पास, एक सीरीज जो कि सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ, एक सीरीज सुबह के लिए, यहां से मुरली हो गया, सब हो गया, कमरे में रखी हुई है एक अलग जगह पर, टेबल पर, तीन अलग अलग सीरीज एक साथ चालू रहे हमारी, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात, और इतना सही पढ़ेंगे, पूरा नहीं, पूरा पढ़े तो बहुत अच्छा, पर टाइम नहीं है सबके पास। इसके लिए अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, यह सबसे पहला सागर। दूसरा सागर परमात्म प्रेम का सागर। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं पहला नहीं, मैं पहला खोजी नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने था, पर मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, उस सागर में मुझे डूबना है। तो दूसरा सागर है प्रभु प्रेम का सागर, परमात्मा प्रेम का सागर। क्या हम करें कि जिससे बाबा के लिए अभी जो हमारे मन में प्यार है वो डबल हो जाए, क्या किया जाए कि जिससे भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ जाए, क्या करेंगे, क्या करेंगे लक्ष्मण भाई, क्या किया जाए, याद तो कर ही रहे, और क्या करेंगे कि जिससे भगवान के लिए हमारा प्यार अभी इतना है वो इतना हो जाए,
लेना है
हर रिश्ते से उसको याद करना है, तुरंत कर लिया तो भगवान कैसे, क्या करे प्रैक्टिकल में, क्या करे, वो तो सब ठीक है, मुरलियां पढ़ेंगे, याद करेंगे वो सब, और क्या करे, उसको फॉलो करना और उसको तुरंत फॉलो करना। क्या वो तो कर ही रहे हम, फॉलो ऑलरेडी कर ही रहे, ऐसा तो कही नहीं सकते कि यहाँ जो बैठे हो फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो तो कर ही रहे, मुरली तो पढ़ी रहे, मुरली तो सुनी रहे, सेवा सारे दिन भर कर ही रहे, याद भी कर ही रहे, ये सब करने के बाद इतना प्यार है, उसकी गहराई में जाना, और क्या करेंगे कि जिससे प्यार बढ़ जाए, जितना है वो बढ़ जाए, डबल हो जाए, कैसे करे, क्या प्रैक्टिकल में क्या करे,
जैसे हम बहन को देखते हैं तो बाबा को हम बहन के रूप में प्यार कर लें,
वो संबंधों का बोल दिया आपने, दैट इज फाइन, और
उसके बिना रह ही नहीं सकते,
वो है, पर कैसे क्या करे, चार सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट जितना हम अभी उसमें इन्वॉल्व है, चार सब्जेक्ट में वो थोड़ा 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 बढ़ा देना, जैसे ज्ञान, मुरली अगर एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो उसको ट्वाइस, अगर मुरली हम दो बार पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं तो उसका चिंतन हम कितना करते हैं, रोज की मुरली से पॉइंट्स निकालना, पॉइंट मुरली बाजू में, अब वो खाली पॉइंट रह गया है, अब उस पॉइंट का अलग से बैठकर चिंतन, अध्ययन या चर्चा, ज्ञान की चर्चा हम कितना करते हैं, बैठकर चार लोग बैठकर, दो लोग बैठकर मुरली का डिस्कशन, कुछ वो करना है जो शायद अब तक नहीं किया, बाकी तो कर ही रहे, ज्ञान सारे दिन भर सुनाते हैं, जो लोग आते हैं उनको सुनाते हैं, सब करते हैं, एक्स्ट्रा क्या करें, ज्ञान, योग, योग कई समय से चालू है, अमृत वेला अगर फिक्स्ड है तो हमें उसकी क्वालिटी और उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है, अगर वो फिक्स्ड है ऑलरेडी, साढ़े तीन मतलब बिल्कुल फिक्स, साढ़े तीन हम उठते ही उठते हैं, तो हमें धीरे धीरे थोड़ा सा और पीछे जाना है, टेस्ट करना है उस समय का भी, जिनका फिक्स्ड है, जिनका है ही नहीं फिक्स वो सबसे पहले तो उसको ठीक करे, जिनका कभी साढ़े तीन, कभी पौने चार, कभी चार, कभी सवा चार, कभी साढ़े चार, कोई उसका कोई नियम ही नहीं है, अभी तक वही अवस्था इतने सालों के बाद भी, इसका मतलब प्यार की बहुत कमी है। अगर उस प्यार को बढ़ाना है तो पहले इसको नियमित करना पड़ेगा, इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। उसके लिए कितनी सारी चीजें हैं, शायद रात में लेट सो रहे, शायद रात में सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, शायद रात में कुछ और चीजें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या बातों में लगे हुए हैं, या क्यों लेट हो रहा है, या भोजन इतना भारी कर रहे हैं, या लेट कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं जिसके वजह से अमृत वेला अभी तक ठीक नहीं हुआ। इतने सालों के बाद भी सारे दिन भर सेवा, सारे दिन भर लोगों को, आत्माओं को समझाना, ज्ञान सुनाना, परंतु खुद हमारे अमृत वेले में हमें हल्की सी भी नींद आती है, इसका मतलब क्या? क्या इसे प्रेम कहेंगे? वह जागृत अवस्था है अमृत वेला कि जिसमें हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। अगर नहीं तो पहले इसको ठीक करना है। बाकी सेवा हमारा चौथा सब्जेक्ट है। सेवाओं में इतना खो नहीं जाओ कि वो ज्ञान और योग ही रह जाए। धारणा, रोज एक पॉइंट लेना या टॉपिक लेना और उस पर लिखना। सहनशीलता, लिखो तो वो समझ में आएगी क्या है। खाली उनके नाम पता है उससे नहीं होगा। चौथा, सेवा। सेवा अर्थात हमारी सेवा धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाए, अर्थात मनसा की होती जाए। स्थूल तो है, ज्ञान सुनाने की एक सेवा है, स्थूल यज्ञ सेवा है, पर हमारी सेवा धीरे धीरे इतनी सूक्ष्म होती जाए कि बोलने का काम कम पड़े। दिन में ही, सुबह ही, अमृत वेले उन सारी आत्माओं की सेवा कर लो जो आज दिन भर में आने वाली है या जिनको हम ज्ञान सुनाने वाले हैं। सुबह ही सबको इमर्ज करके, सुबह ही सबको आह्वान करके वही ज्ञान सुना देना। हमारी स्थूल सेवा धीरे धीरे सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाए। तो चारों ही सब्जेक्ट में आगे चले जाना, अर्थात इस प्यार को बढ़ाना। तो दूसरा जो सागर है जिसमें हमें डूबना है वो है ईश्वरीय प्रेम का सागर। और फिर उसके लिए हमारी जो संसार में आसक्तियां है, व्यक्तियों से जो प्यार है, उससे थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ईश्वरीय प्रेम और मनुष्य प्रेम। एक तो भगवान से प्यार होगा या तो मनुष्य से प्यार होगा, वो चाहे कोई भी हो, फिर लौकिक अलौकिक जो भी, सब एक तरफ। जब भगवान है उसके सामने और कुछ भी नहीं है, वही सर्वस्व है, वही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इस प्यार में डूबने के लिए स्थिति निर्मोही चाहिए। माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, मित्र संबंधी, ये सारे ही बुद्धि में बैठे हुए हैं और इन्हीं की याद है, तो वो एक स्थिति नहीं होगी, वो अनुभव नहीं होगा। इस सागर में डूबना है, ये दूसरा सागर है, प्रेम का सागर, परमात्मा प्रेम का सागर। तीसरा सागर, परमात्मा खजानों का सागर, अर्थात परमात्मा प्राप्तियों का सागर। कल की जो संडे की मुरली है, पार्टियों से मुलाकात, बाबा ने कहा है अपने खजानों को याद करो, फिर चेक करो कौन सा खजाना है और कौन सा नहीं है। बार 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 मैंने क्या पाया है, बाबा ने कहा पाया पाया हुआ चेहरा चाहिए, पाया हुआ, खोया खोया चेहरा नहीं चाहिए, खुश्क चेहरा नहीं चाहिए, खुशी वाला चेहरा चाहिए। अनुभव की अथॉरिटी बनो। उसके लिए क्या पाया है, कौन से खजाने हैं, कौन सा भाग्य है, उसका निरंतर मन में बुद्धि में चिंतन चाहिए। नहीं तो निरंतर ये होता है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, कंपैरिजन होता है, इसकी सेवा अच्छी है, मेरी सेवा अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा अच्छा कमरा मिल रहा है, मुझे अच्छा कमरा नहीं मिल रहा है, इसके ज्यादा दोस्त है, मेरा कोई भी नहीं है, कंपैरिजन, हर चीज में कंपैरिजन करता है व्यक्ति। इसको भोजन अच्छा मिल रहा है, मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी चीज में कंपैरिजन करता है। ये तब होता है जब अंदर खालीपन है, तब। कुमारियों से मुलाकात, कल की मुरली, खाली नहीं होनी चाहिए, संपन्न बनो। तुम्हें खाली नहीं होना है, संपन्न। तो परमात्मक खजाने जो भी है उनका निरंतर चिंतन एकांत में और मौन में बैठकर, क्या मिला है मुझे, यह तीसरा खजाना। चौथा खजाना परमात्मा गुणों का खजाना, परमात्मा गुणों का खजाना या गुणों का सागर। परमात्मा सर्व गुणों का सागर है। एक प्रश्न हमेशा रहता है, ये सारे गुण हम कैसे धारण करें। एक विधि है परम धाम का ज्वालामुखी योग, उसके साथ एक हो जाना, कंबाइंड स्टेज में लंबा समय रहना, मैं और वो, स्पिरिचुअल इंटीमेसी, स्पिरिचुअल डिवाइन यूनियन, इस स्थिति का लंबा समय अभ्यास करना, वो यहां और मैं यहां और मैं और वो एक, जो जो उसमें अब वो मुझ में, इस अवस्था का अमृत वेला और शाम को दो टाइम पर विशेष रूप से अभ्यास करना है। ये तो अभ्यास हम करते ही है, मैं आत्मा यहां हूं, सूक्ष्म वतन में गई, रूह रिहान किया, परंतु वह सूक्ष्म वतन का सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए और परम धाम में वो और मैं निरसंकल्प, वो अवस्था में सारा कुछ धारण होगा, वो अपने आप आएगा। तो परमात्मा गुणों का खजाना, जितने गुण उसमें वो सब अपने आप आएंगे। पांचवा परमात्मा शक्तियों का सागर। परमात्मा शक्तियों का जो सागर है उस सागर में हमें डूबना है। शक्ति एक ही है पर उसकी अनेक अनेक रूप से वो अभिव्यक्त होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है पर वही इलेक्ट्रिसिटी जब बल्ब में, लाइट में जाती है तो प्रकाश दे रही है, वही जब फैन में जाएगी तो हवा देगी। है एक पावर एक ही, परंतु हमने फिर बहुत सारे नाम अलग 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 स्थितियों के, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, कल की अव्यक्त वाणी, जो अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं उनकी कुछ पांच निशानियां बाबा ने बताई है, उसमें से एक निशानी है ऐसी आत्माएं भरपूर होगी, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति अपने आप उनमें रहेगी, जो ऑथोरिटी की अनुभव के, ऑथोरिटी की सीट पर सेट है ऐसी आत्माएं। बाबा ये सौगात देते खाली कुमारियों को नहीं, सभी मधुबन निवासियों को ये जो सौगात दी है अनुभव की। तो शक्तियां, वो सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा उस शक्तियों के सागर में, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के सागर में या परमात्मा शक्तियों के सागर में डूब गई हूं और मुझे इसमें गहरे जाना है, इतना गहरे जाना है कि सारी शक्तियां मुझ में अपने आप धारण हो जाए, सारे वो गुण मेरे अंदर धारण हो जाए, वो सारा जो खजाना है वो मुझ में आ जाए, वो ईश्वरीय प्रेम जो भक्ति मार्ग में हमने इतना उससे किया था वो सारा फिर से प्रकट हो जाए, वो जो ज्ञान इतने समय से ज्ञान की अव्यक्त धारा बहा रहा है, प्रवाह बह रहा, वो सारा के सारा अंदर ऐसा समा जाए कि जीवन वो ना रहे जो अब है। परमात्मा वरदानों का सागर। अगला, परमात्मा वरदानों का सागर। इतने सारे वरदान दिए हैं उसने, पर क्या हमने उसके ऊपर इतनी गहराई से चिंतन किया है? एक एक वरदान, छोटा सा हम वरदान ले ले, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा इस वरदान में जीते रहो, निरंतर जीते रहने का वरदान, अर्थात जीवंत रहने का वरदान, अर्थात मूर्छित ना होने का वरदान है ये। मूर्छा अर्थात देहाभिमान, मूर्छा अर्थात देहाभिमान, मूर्छा अर्थात अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, और जब हम बेहोश होते तभी गलतियां होती है, तभी आसक्ति होती है, तभी क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ ना कुछ प्रकट होता है। यदि हम जागृत अवस्था में तो कभी भी कुछ भी प्रकट नहीं होगा विकार। तो परमात्मा वरदानों का सागर, इस सागर में डूबना है, जो जो उसने रोज की मुरली का वरदान, और उसकी गहराई में जाना और उसके अंदर ही अंदर जाना, जब तक कि कुछ ऐसा अनुभव न हो जाए कि हमें कुछ हाथ में मिल गया, तब तक जाते रहना। और इसमें भी बाधाएं आएंगी, परंतु क्या कहता है कवि, उस पथ पर चलना मेरे मन को रुचा नहीं, तुम हंसो मगर मेरा विश्वास न हारेगा, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की, तुम वहां भले बैठो और डगर की बातें करो, परंतु मैं नहीं कर सकता ये, क्योंकि मुझे तो आगे जाना है। कितना भी कोई रोके, और रोकने वाले रहेंगे, व्यक्ति होगा, परिस्थिति होगी, अपने ही संस्कार होंगे, आलस से होगा। किसी को कहो कि ये लो मुरली और चिंतन करो, क्या कहता है सबसे फर्स्ट रिएक्शन, ये हमसे नहीं होगा। किसी से कहो ये वरदान है, ये स्लोगन है, अब इस स्लोगन के ऊपर तुमको आधा घंटा बोलना है, चिंतन करो और आधा घंटा बोलो, कितना मुश्किल काम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा चिंतन चल नहीं रहा है, रुक चुका है, क्योंकि संसार का चिंतन उसमें समाया हुआ है, व्यक्तियों का चिंतन उसमें समाया है, परिस्थितियों का, समाज का, संसारिक समाचार का। उसके चिंतन से जब बाहर आएंगे तब कहीं ज्ञान का चिंतन करेंगे ना, नहीं तो कब करेंगे। परमात्मा क्या कहा, वरदानों का सागर, और सातवा परमात्मा संबंधों का सागर। भगवान से हम जितने संबंध जोड़ना चाहे उतने जोड़ सकते हैं। यहां सुबह की क्लास में हम लोगों ने जो 108 संबंध बनाए हैं बाबा से, उसमें अलग अलग कई लोगों ने अलग अलग दिन अलग अलग होमवर्क, यहां सुबह की एक क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है कि कैसे एक ही मुरली को 10 लोगों ने अलग अलग संबंधों से देखा। एक किसी ने बाबा को बागवान, किसी को खिवैया, जैसे एक मुरली है और हमारा दृष्टिकोण है कि आज की मुरली में बाबा बागवान है, क्या कहा, क्या कह रहा है, ये चिंतन की प्रक्रिया है। और हम अनुभव भी करें कि वो मेरा ड्राइवर है, मेरा पायलट है, अलग 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 अनुभव। एक ही नहीं, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, चलो आगे काम पूरा हुआ, ऐसा नहीं, इससे कोई अनुभव नहीं होगा। खाली बाबा के सामने अमृत वेला बैठ गया, तुम बाप भी हो, तुम टीचर भी हो, तुम सदगुरु भी हो, अमृत वेला आगे बढ़ा, इससे अनुभव होगा क्या? कुछ और करना पड़ेगा। वो हमारा सलाहकार है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा कोच है, वो हमारा इंस्ट्रक्टर है, वो हमारा ट्यूटर है, वो हमारा काउंसलर है। आज सारे दिन भर जैसे उदाहरण काउंसलर के रूप में उसको याद करो, सलाह देने वाला, परामर्श देने वाला। He is our spiritual counselor. He is our financial counselor. Financial consultant. सब है कि नहीं वो? हर संबंध उससे। तो ये हजारों लाखों संबंध, इस संसार में जितने प्रोफेशंस है वो सब भगवान है। कारपेंटर से लेकर तो सब कुछ, कॉबलर से लेकर तो सब कुछ वो है, डॉक्टर, इंजीनियर, हर्बलिस्ट, धोबी, टेलर, जो जहां है उसको उस संबंध से याद करना। जादूगर, रत्नाकर, सौदागर, सब कुछ अलग 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 नए संबंध, हर दिन नए नए संबंध, एक ही संबंध से नहीं याद करते रहना है उसको, अलग अलग हर दिन नया संबंध, आज किस संबंध से याद करें। नर्स, मेड सब है तो मजा आएगा, रमणीकता आएगी। तो परमात्मा संबंधों का सागर, ऐसे ये सात समुंदर या सात सागर है जिसमें हमें क्या करना है, रोज डूबना है। और जब तक आत्मा इनमें नहीं डूबती, उसमें वो भरपूरता का अनुभव हो, उसको उसको लगे कि मैं आत्मा शक्तिशाली हो गई हूं, जब ये सागरों में डूबेंगे तो ही होगा। खाली हम सेवा करते रहे, स्थूल सेवा करते रहे, आत्माओं को ज्ञान समझाते रहे, चित्र समझाते रहे, ये बहुत अच्छा है, टाइम इसमें बहुत, कल की मुरली में कहा है बाबा ने, अगर माया आ जाए तो क्या हो, पार्टियों से मुलाकात, ज्ञान समझाओ। तो जब तुम समझाते हो खुद भी तो सुनोगे, जब तुम समझाते हो तो खुद भी सुनते हो, तो उससे भी फायदा है। हाँ फायदा है, परंतु हमें आगे भी तो बढ़ना है, और आगे और आगे और आगे। यहूदी फकीर था कभी एक, हेलिल, उसको किसी ने पूछा था व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है, उसने अध्यात्म की परिभाषा दी थी, अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, रुकना नहीं है। थोड़े बहुत अनुभव हो गए, बाबा के प्यार में आंसू आ गए, तो यहां रुकना नहीं है, अभी और भी आगे कुछ है। ज्ञान हम समझ रहे, मजा आ रहा है, और भी आगे, सेवाएं बहुत कर ली दिन रात, पर यहां रुकना नहीं है, और आगे और आगे और आगे, मूव अहेड, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। सूक्ष्म अनुभवों में आगे बढ़ना, सेवाओं को सूक्ष्म करना, ज्ञान की सूक्ष्म गहराई तक पहुंचना। योग के जो अनुभव अभी हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं और कितनी गहराई है उसमें। क्या ऐसा अनुभव होता है कि हम बैठे, कल की मुरली में बाबा ने 5 दृश्य बताए हंसने हंसाने के अमृत वेले। पहले बच्चे वो है जो कि निशाना लगाते 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 थक जाते, अमृत वेला लगाते परम धाम में पहुंचते, किधर पता नहीं, ब्रह्मलोक या निद्रा लोक में। ये पहला ग्रुप है अमृत वेला। दूसरा ग्रुप है बच्चों का जो कि डबल झूले में झूलते रहते हैं, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं। तीसरा ग्रुप है नेमिनाथ, क्योंकि अमृत वेला करना है बराबर 3:30 बजे, आंख खुली अमृत वेला आके बैठे, काम पूरा हुआ, 4:45 हो गए, चलो नियम निभाने वाले। चौथा ग्रुप है हठ योगी, बैठे हैं पर अनुभव कुछ नहीं हो रहा है, शरीर एकदम स्थिर है हठ योगी जैसा, परंतु अनुभव कुछ नहीं। और 5वें नंबर के बच्चे है अमृत वेला जो बाबा ने देखे, वो है लगन में मगन, ऐसे बहुत कम है, जो कि खोए हैं बाबा की याद में, इतने खोए हैं कि उन्हें फिर वो भान भी नहीं है समय का। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात समय से परे अवस्था है, टाइम कॉन्शियसनेस से भी परे अवस्था है। सोल कॉन्शियसनेस मींस बियॉन्ड टाइम कॉन्शियसनेस, वो अवस्था। ये नहीं कि अभी 4:30 बज गए, अभी और थोड़ा 5 मिनट, फिर देखा अरे अभी भी टाइम है, फिर अभी भी टाइम है, हाँ एक बार हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत 7:30 बजे का बजा कि चलो भागो भोजन के लिए, जैसे खत्म होने वाला है। ये 5 दृश्य देखे अमृत वेले बाबा ने। बाबा ऊपर से बहुत कुछ देखता है, हर्षित भी होते हैं तो हंसी भी आती है उसको। मुरली की शुरुआत की कि मुझे बाप दादा हर्षित होते ऐसे डबल प्योर श्रेष्ठ आत्मा है, हीरो पाठधारी कन्या को देखकर, पर बाद में कहा बाप दादा को हंसी भी आती है ये देखकर, ऐसे अमृत वेले के दृश्य देखकर। तो पहला बताया परमात्मा ज्ञान का सागर, दूसरा परमात्मा प्रेम का सागर, तीसरा परमात्मा खजानों का सागर या परमात्मा प्राप्तियों का सागर या परमात्मा भाग्य का सागर। इंग्लिश में एक शब्द है FAT, फैट। हम जैसे ही ब्राह्मण बनते फैट बन जाते हैं, क्यों? F फॉर फॉर्चून, A फॉर अटेंडमेंट, T फॉर ट्रेजर्स। प्राप्तियां, भाग्य, प्राप्तियां और खजाने, FAT, ये तीनों मिल जाते हैं। तो परमात्मा खजानों का सागर, अगला परमात्मा गुणों का सागर, परमात्मा शक्तियों का सागर, परमात्मा वरदानों का सागर और परमात्मा लास्ट संबंधों का। हमने कितने संबंधों का अनुभव किया, अभी कितने संबंध बाकी है, हमने तो अनुभव ही नहीं किया अभी तक, हमें पता ही नहीं। क्या हमने उस संबंध का अनुभव किया है कि जिसमें परमात्मा साजन है, फिर दूल्हा है ग्रूम और फिर पति है, ये 3 संबंध है। पहले तो शादी के पहले वाला, फिर शादी के टाइम का और फिर बाद का, ये 3 अनुभव है। क्या हमने इन 3 संबंधों का अनुभव किया है? बेटा कितना अनुभव किया है, माँ कितना अनुभव किया है, बाप कितना अनुभव किया है, भाई अनुभव किया है, बड़ा भाई, बहुत सारे संबंध बाकी है अभी हमने अनुभव नहीं किए। तो ये सारे क्या थे? सागर, जिसमें हमें क्या करना है? डूबना है। अभी आगे नैनों के तीखे तीर, कुंतनों कुंतलों की छाया, मन बांध रही जो यह रंगों की डोरी है, इन गीली गलियों में भरमाया कौन नहीं, यह भूख आदमी की सचमुच कमजोरी है, पर अपने पे विजय नहीं जिसने पाई, मैं उसको कायर कहता हूँ पशु कहता हूँ, बस इसलिए मैं वीरानों में रहता हूँ, तुम जादू भरी नगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भावर की बातें किया। यहाँ एक प्रलोभन कवि के सामने आया है, स्त्री के रूप में, विकार के रूप में। वो कहता है कि नैनों के तीखे तीर, किसी के नैनों के तीखे तीर, कुंतलो कुंतल अर्थात केश, बालों की छाया, मन बांध रही है रंगों की डोरी, इन गीली गलियों में भरमाया कौन नहीं, किसके मन में मोह जागृत नहीं हुआ ऐसे सामने आने के बाद। यह भूख आदमी की सचमुच कमजोरी है, पर अपने पे विजय नहीं जिसने पाई, मैं उसको कायर कहता हूं, पशु कहता हूं, बस इसलिए मैं वीरानों में रहता हूं। तुम जादू भरे नगर की बातें किया करो, जब जब हो जरा उतार और पी लिया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। इस ब्राह्मण जीवन में भी जब जब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा एक जो बंधन आता है, सेवाएं सब साथ मिलकर करते हैं, वहां लगाव उत्पन्न होता है एक दूसरों में, सेवाएं करते करते आपस में लगाओ। उसने कहा है यह भूख आदमी की सचमुच ही कमजोरी है, इन गीली गलियों में भरमाया कौन नहीं, किसका मन भ्रमित नहीं हुआ है इन गलियों में, किसका ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य है जो कि अखंडित ही रहा, टूटा नहीं, लगाव उत्पन्न नहीं हुआ, मोह उत्पन्न नहीं हुआ, आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई, ऐसी निर्मोही अवस्था ब्राह्मण जीवन में रखना वरदानी है। और ये हम रख सकते हैं कि जब हमारा लक्ष्य सामने हो, पर अपने पे विजय नहीं जिसने पाई, मैं उसको कायर कहता हूं, पशु कहता हूं, पशु अपने इंद्रियों पर जिसकी विजय नहीं है, स्वयं के मन पर जिसकी विजय नहीं है। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान की परिभाषा दी है, जब चाहो जहां चाहो जितना समय चाहो अपने मन बुद्धि को लगा सको, कल भी कहा कि इस सीट पर रखो मन बुद्धि को, कल कहा था ना वरदान में, आसन, तपस्वी कौन से आसन पर बैठा रहता है, श्रेष्ठ तपस्वी एकर स्थिति और फरिश्ता स्थिति के आसन पर वो बैठता है, उस पे स्वयं को बिठा के रखना, आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कॉन्स्ट्रेंट, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ गवर्नेंस, ऐसी संयम की अवस्था, बस इसलिए मैं वीरा, तुम तो वहां बैठकर जादू की नगरी की बातें करो करो, वो कहता है मैं इन सब इसमें नहीं जाने वाला, इन नगरों में मैं अपने वीरानी मतलब एकांत में और अपने मौन में रहता हूं, ये व्यक्ति जो है मुझे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकेंगे, ये भी एक भूख है। इंद्रियों की तृप्ति कभी भी व्यक्तियों के द्वारा न हुई है न होगी, आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती है इंद्रियों से, इंद्रियों के सुखों से, प्लेजर जो मिलता है वो बहुत छोटा होता है, टेम्पररी, कुछ खाओ थोड़ा सा टेम्पररी प्लेजर मिल गया, हो गया, किसी व्यक्ति के साथ घूमो फिरो, हो गया, ये कभी भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, आत्मा को तृप्त परमात्मा ही कर सकता है, बस। इन्फिनिट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट, आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास, अनंत की भूख किसी भी आदि अंत वाले से नहीं भरेगी। इसलिए एक जो नियम हमें बनाना है इस ब्राह्मण जीवन में, कहीं भी व्यक्तियों में अटकना नहीं है, भाई या बहन, क्योंकि सब डुबोने वाले हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती फिर, क्योंकि ये मार्ग अकेले का मार्ग है, अकेले को इसमें बढ़ना है, बिना कोई लौकिक साथी के, अलौकिक साथी भी नहीं चाहिए इसमें। हाँ, साथ में चल रहे, साथ में सेवाएं कर रहे, वो दूसरी बात है, परंतु उसमें फंस जाना, उनको फिर मिस करना, वो चाहिए, अगर वो नहीं है तो उदासी, ये नहीं। पथ पर चलते उस रोज बाहर मिली मुझे, अब एक दूसरा प्रलोभन बाहर का, बाहर अर्थात वसंत, अच्छा मौसम, बोली गायक मैं तुमसे ब्याह रचाऊंगी, एक दूसरा प्रलोभन उसके सामने आ गया, वो कहती है मैं तुमसे शादी करूंगी बाहर, ऐसा मनमौजी मिला नहीं दूजा कोई, जग में सारे फूल तुम्हारे घर में लाऊंगी, वो कहती है कि मैं सारे संसार के जितने फूल है तुम्हारे चरणों में ला दूंगी, मैं तुम्हारे जैसा मनमौजी मुझे आज तक नहीं मिला, पर मैं बोला मेरा प्यार तुम सदा सुखी रहो, मेरे मन को कोई बंधन स्वीकार नहीं, मेरे मन को कोई भी बंधन स्वीकार नहीं, ये वाक्य कितना पावरफुल है, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है, अच्छा है, तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है, थैंक यू, तुमने जो मदद की बहुत अच्छा, तुमने मेरी स्तुति की, गायन किया, अप्रिशिएट किया, मैं बीमार था तुम देखने आए, फूल लेके आए, धन्यवाद, तुमने मेरी केयर की, तुमने प्यार दिया, अप्रिसिएशन किया, अटेंशन दिया, तुमने मेरी महिमा की, सब किया मेरा, बहुत अच्छा, थैंक यू, परंतु मेरे मन को कोई बंधन स्वीकार नहीं, तब से बाहर से मेरा नाता टूट गया। ये जो बाहर आई थी वो मुझसे कह रही थी, क्या कह रही थी कि बोली मैं तुमसे ब्याह रचाऊंगी, जग के सारे फूल तुम्हारे चरणों में लाऊंगी, पर उसने क्या कहा, मैं बोला मेरा प्यार तुम सदा सुखी रहो, मेरे मन को कोई बंधन स्वीकार नहीं, तब से बाहर से मेरा नाता टूट गया, तुम फूलों को अपनी झोली में सहज रख लिया करो, मुझसे केवल पतझड़ की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। ये जो रंग बिरंगी दुनिया है संसार की, ये बाहर है, और पतझड़ है वैराग का मार्ग, पतझड़ है विवेक का मार्ग, पतझड़ है बेहद के संन्यास का मार्ग, इसी में मैं खुश हूं, मेरे मन को कोई बंधन स्वीकार नहीं। बाबा ने कहा है, तुम्हारे सिर पर 63 जन्मों के पापों का बोझा है, अभी नए पाप, फ्रेश पाप, फ्रेश बंधन निर्माण नहीं करने हैं, फ्रेश बॉन्डेजेस, फ्रेश रिलेशनशिप्स, किसी को भाई बना दिया, भाई है पर विशेष भाई, किसी को मां ही बना दिया, मां तो है मां जैसी, परंतु कहने के लिए अभी मां, पहले माता जी, अभी कुछ दूसरा नाम, ये सारे बंधन है, सूक्ष्म बंधन, सोने की चेन, लौकिक के बंधन तो तलवार निकाले और फटाफट काट दिए सारे, वो खत्म हो गए, पर ये जो चेन है जिसमें गहने लगे हुए हैं और आभूषण की तरह पहन रखे हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, बॉन्डेजेस, मेरे मन को कोई भी बंधन स्वीकार नहीं। इस वाक्य को, बहुत शक्तिशाली वाक्य है, हमें नहीं तो इस मार्ग में इतने बंधन है, कोई ना कोई बांधता ही रहता है, कहीं ना कहीं बांधता है, सेवा करो सेवा बांधती है, पुण्य करो पुण्य बांधता है, अच्छा काम करो वो बांध देता है, क्योंकि अहंकार साथ में आता है, सूक्ष्म अहंकार जुड़ जाता है। आज बाबा ने शुद्ध अहंकार की बात की है, कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं ना कहीं से आ जाता है, ये सभी अपने मन में दृढ़ निश्चय कि मुझे किसी भी बंधन में बंधना नहीं है, चाहे कितना भी कोई अच्छा हो, तुम उधर हम इधर, तुमने सब कुछ अच्छा किया, थैंक यू, ओम शांति, टाटा, क्योंकि वो बंधन कहां पहुंचाएगा वो बता नहीं सकते। क्या हमने देखा है उस बंधन का हमें आगे का भविष्यवाणी पता है क्या होने वाला है? हमने आज किसी से दोस्ती कर ली, ठीक है, अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, भाई बहुत अच्छा है, उससे दोस्ती कर ली, अब उसका पास तो हमें बहुत पता नहीं, चलो हमने पता कर भी लिया, परंतु फ्यूचर में उसकी वृत्ति दृष्टि ऐसी पवित्र रहने वाली है, इसका कोई भरोसा है? हमने अपने जीवन के सारे राज, सीक्रेट्स सारे उसको बता दिए, इस संसार में कोई भी सगा नहीं है, इस संसार में कोई भी सगा नहीं है, ब्रह्मवाक्य है, एक भगवान के सिवा सब कभी ना कभी, बेटा बेटी, बहू, मां बाप, बहन भाई, कभी ना कभी तो यह अनुभव होगा ही कि इसने धोखा दिया। कल की मुरली, अनुभवी मूर्त जो होगा वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, और एक बार धोखा खा लिया, एक बार ठोकर लगी, उसके बाद तो संभल नहीं है, अगर नहीं संभला तो उसे मूर्ख ही कहेंगे। कोई कितना भी अच्छा हो, सब अच्छे हैं, सबके प्रति पॉजिटिव भावना, परंतु तुम अपने मार्ग, हम अपने मार्ग, बंधने का संकल्प, मैत्री करने का संकल्प, दोस्ती बढ़ाने का संकल्प, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज इधर से, मैसेज 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 मैसेज, एक व्हाट्सएप और दोस्ती, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, शादी नहीं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अलौकिक रूहानी मैत्री, और वहां से ग्राफ नीचे। इसलिए मेरे मन को कोई बंधन स्वीकार नहीं, इसलिए मेरे प्यार तुम सदा सुखी रहो। तब से बाहर से मेरा नाता टूट गया, तुम फूलों को अपनी झोली में सहज रख लिया करो, मुझसे केवल पतझड़ की बातें किया करो। वैराग की, तपस्या की, योग की, ज्ञान की, सेवा की, धारणाओं की, बाकी बातें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। राजनीति में क्या हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किसने कहां क्या किया, वो पहले यहां था भाई, अभी वो डिपार्टमेंट चला गया, क्यों गया, तुमको क्या करना है, यहां उस लिए आए थे, किसके घर में क्या कर चल रहा है, तुमको क्या करना है, तुम पुलिस ऑफिसर हो क्या, सीआईडी, जो तुमको क्रिमिनल को ढूंढना है, करना क्या है तुमको, काम से काम, माइंड योर ओन बिजनेस। यहां आए थे किस लिए, तपस्या करने, वही करना है, जो करने आए वही करना है, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये देखूं वो देखूं, इसके साथ घूमूं उसके साथ घूमूं, इससे दोस्ती उससे दोस्ती, आज ये खाऊं कल वो खाऊं, कल ये खाया था आज क्या खाऊं, आज कुछ नया बनाऊं, कहां क्या बन रहा है, सब बंधन में बांधने वाली बातें हैं। शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो स्वतंत्र है, हर प्रकार की परतंत्रता, स्लेवरी, इमोशनल स्लेवरी, एक होता है इमोशनल स्लेवरी, किसी के अधीन सारे इमोशंस है, उसके हाथ में रिमोट है, उसने इधर से बटन दबाया कि हम दुखी, उधर से एक मैसेज आया हम सुखी, उधर से कुछ कहा उसने अच्छा बोला, हमारी बात मान ली हम खुश, हमें हमारी बात नहीं मानी हम नाराज उदास, 3 दिन के लिए मौन उस व्यक्ति के साथ, बाकी सबसे बोल रहे उसके साथ नहीं बात करेंगे, या वो उधर से तो हम इधर से, मन मुटाओ, ये सब बंधन है, इमोशनल स्लेवरीज, इमोशनल बॉन्डेजेस। इसलिए ये सब से हमें क्या करना है, स्वयं को मुक्त रखना है, कोई भी बंधन में खुद से बंधना नहीं है, ये हमारे संकल्प के ऊपर है। कल बाबा ने कुमारियों से कहा है, कभी हलचल तो कभी हिम्मत, कभी उमंग उत्साह है कभी कम है, संकल्प तो करते हैं परंतु वो संकल्प प्रत्यक्ष फल नहीं बनता, क्योंकि उसमें परसेंटेज है, शक्ति की मात्रा कम है, वो संकल्प दृढ़ नहीं होता है। अगर कोई दृढ़ संकल्प कर ले, मुझे किसी में भी व्यक्ति में अटकना नहीं है, किसी भी पुरुष में नहीं, किसी भी स्त्री में नहीं, किसी भी ब्राह्मण आत्मा में नहीं, ये संकल्प ही पूरा जीवन तार देगा, पूरा ले जाएगा। अगर ऐसा कोई संकल्प नहीं है तो 1000 लोग आएंगे इस मार्ग में, खींचेंगे, दोस्ती होगी और ज्ञान योग से टाइम तो वेस्ट होगा, चलो और कुछ नहीं, टाइम तो वेस्ट तो करेंगे, बातें टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, फोन कॉल्स, एनर्जी वेस्ट, और रूठ गया रूठ गया तो उसको मनाने में वो दूसरी एनर्जी वेस्ट, ये सब होगा। फिर से, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर से बातें किया करो। दूसरे चाहे बैठे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब उनसे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपना मार्ग ढूंढना है, उनको जो करना है करने दो, तुम जादू भरी नगरी की बातें किया करो, तुम भंवर की बातें किया करो, तुम भंवर से बातें किया करो, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मुझे उससे कुछ नहीं है, मुझे तो अंदर जाना है, एकला चलो। If they answer not to thy call, walk alone. If they desert you while crossing the wilderness, open thy heart and speak out alone. Walk alone. Gurudev Rabindranath Tagore ne kaha hai, ekla chalo re, sare tumhara saath chhod de, koi bhi tumhare saath na aaye, akela chalo. Wo chalte samay, if the wo tumhara jo marg hai, usme sare kaante biche hai, on that blood line tract, walk alone. वो कांटों को रोनते हुए चलो, परंतु अकेला, किसी को मदद नहीं मांगो, भीख नहीं मांगो, तुम मेरे साथ दो, तुम मेरे साथ चलो, भीख मांगने से तो ये अकेले जाना अच्छा है, जब वो अकेले तुम अंधकार से जा रहे हो, वो तुम्हारी रोशनी भी छीन ले, अपने ही हृदय को जगाओ, जलाओ और उसका जो प्रकाश है उसमें चलो, तो गहराई में जाना है। सार के लिए दो तीन बातें बताते हैं। सबसे पहला बताया, जो पांच सात प्रकार के सागर है उसमें डूबना है, गहरे जाना है, ये पहली बात। दूसरा बताया कि ये जो भूख गीली गलियों में भरमाने वाले बहुत है, ये जो गलियां है इसमें भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग हैं, परंतु हमें कहीं पर भी अटकना नहीं है। वो जादू भरी नगरी, वो सारी संसार की बातें, जब लक्ष्य सामने हो तो हम कहीं पर भी नहीं भटकेंगे। लक्ष्य हट गया तो भटकना चालू। और तीसरा व्यक्तियों के बंधन, कोई भी व्यक्तियों के बंधन अपने मन में स्वीकार नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति का इतना अधिकार हम पर नहीं हो जाए कि उसकी वजह से हम दुखी हो रहे, उसकी वजह से सुखी हो रहे। अपना रिमोट हमने उसके हाथ जेब में डाल के रखा है। अगर ऐसी अवस्था है तो सबसे पहले यहां पे काली का रूप धारण करना पड़ेगा, उस बंधन को काटने के लिए कठोर बनना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए वो व्यक्ति नाराज हो जाए तो चलेगा, नाराज हो गया तो, परंतु कठोर, क्योंकि आगे उसका कल्याण भी इसी में है, नहीं तो दोनों ही व्यक्ति गड्ढे में जाके गिरेंगे, क्योंकि श्रीमत वहां नहीं है, श्रीमत की अवहेलना हो रही है, श्रीमत टूट रही है कहीं ना कहीं। लास्ट दो तीन बातें बताते हैं, फिर क्लास को पूरा करेंगे। यहां बाबा ने बंधन की बात कही है, कितने बंधन है और कौन कौन से। पहला बंधन है देह के भान का बंधन, या देह अभिमान का बंधन, या देह के अहंकार का बंधन। ये एक बहुत बड़ा बंधन है पर बहुत सूक्ष्म। दूसरा बंधन है देह की इच्छाओं का बंधन। ये देह की ऐसी आदत पड़ गई है, उसको बहुत सारी चीजों की आदत है, बहुत सारी इच्छाएं उसकी ऐसी है कि वो इच्छा ही एक बंधन है, परंतु देह की इच्छा, देह की तृप्ति की इच्छा है। उसमें भोजन भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, नींद आ सकती है, वो हमारे ऊपर है, हम कितना वो लेना चाहे, सब मन के ही खेल है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो दिन भर खाता है फिर भी अतृप्त रहता है, वही व्यक्ति अगर किसी कारण से उपवास करता है, किसी भी कारण से, तो आराम से कर लेता है भक्ति मार्ग में, उसको उस दिन कुछ भी भूख नहीं लगती। क्यों? वो तो एक ही व्यक्ति है। हमने अपने माइंड को किस तरह ट्रेन किया है उसके ऊपर है। देह की इच्छा है। तीसरा, देह के संस्कारों का बंधन। देह को किस प्रकार की आदतें हमने डाली है, हमारे ऊपर है। अभी हम सब देते नहीं, ये किया तो मेरे को ऐसा हो जाता है, ये हमने ही आदत डाली है, और हम चाहे तो शरीर की सारी आदतें हम बदल सकते हैं। देह के संस्कार तीसरा। चौथा, देह का स्थान का बंधन। पंजाब से आए हैं तो पंजाब वाले कौन है यहां, उसको ढूंढा जाता है। महाराष्ट्र से आए हैं तो महाराष्ट्र वाले कौन है, कर्नाटक से आए तो कर्नाटक वाले कौन है। अभी तक जिस स्थान से आए हैं उस स्थान के प्रति मोह हमारा अभी भी है, जबकि मधुबन में आ गए पर उस स्थान से मोह अभी भी है। अभी भी वो स्थान वाला कोई मिल गया तो बड़ी खुशी होती है, तुम भी कर्नाटक से, हम भी कर्नाटक से। कभी ऐसा किसी ने बोला, अरे वाह तुम भी परमधाम से और हम भी परमधाम से, बहुत ही खुशी हुई आपको मिलके, ऐसा कोई नहीं बोलता है। कि कोई बोलता है ऐसा? कोई नहीं बोलता है। अगर कोई मिल जाए बिल्कुल केरला वाला, अरे तुम भी केरला से, हम भी केरला, चलो साथ में मिलके नकी का राउंड। क्योंकि एक ही स्थान भी बंधन बन गया, स्थान में भी अभी भी मोह है। फिर है देह का धर्म। देह का धर्म, जो पहले ब्राह्मण रह चुके हैं उनको बड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नशा रहता है उस बात का। हम ब्राह्मण है, वैसे भी हम ब्राह्मण घराने से, उस घर का, उस धर्म का अभी भी नशा है, जबकि यहां द्विज है, नया जन्म हो गया है, फिर भी वो जो पहले जो धर्म था वो अभी भी स्मृति है, वो भी एक बंधन है। देह की भाषा का बंधन, देह की भाषा। ब्रह्मा बाबा के तन में जब से शिव बाबा आए खाली हिंदी का प्रयोग किया बस, वो दूसरी बात है कि अगर कोई समझता नहीं जिसको उसके सामने ठीक है, परंतु हम ढूंढते हमारी भाषा वाला कौन है और हम उसी भाषा में बोलना चाहते हैं, जबकि यहां क्या बताया बाबा, एक ही भाषा है तुम्हारी हिंदी। वो दूसरी बात है कि तुमको अगर दूसरी भी आती है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बोला जाता है तो ठीक है, परंतु जहां बोल सकते, हम देखते हैं साउथ इंडियन के बहुत सारे लोग अभी भी मुरली वही तेलुगु और तमिल और उसी में लिखते हैं। क्यों? भगवान के लिए प्यार अर्थात उसकी भाषा से प्यार, परमात्म प्रेम अर्थात हिंदी से प्रेम, क्योंकि उसकी बोलने की भाषा वो है और भाषा उसने जिस भाषा में बोला है उसी भाषा में सोचना, योग करना, उससे बात करना, ये भी तो तपस्या है, ये भी तो एक तपस्या है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम साउथ में हमारा जन्म हुआ तो हम वही भाषा बोलेंगे, क्या सीखने का अवसर नहीं दिया भगवान ने? यहां कितने सारे भाई बहने कैसे सीख गए, मधुबन वाले सीख गए सारे, फिर तुम ये क्यों कहते हो अभी भी उसी भाषा? ये भी भाषा का बंधन है एक, इस बंधन से भी सूक्ष्म से निकलना है। विदेशी आकर भारत में हिंदी सीख रहे हैं पर हमारे जो भारतीय है वो नहीं सीखते, क्यों? उनको समझ में नहीं आती अभी भी, अर्थात ये भी आलस्य अलबेलापन है, सूक्ष्म, ये भी आलस्य अलबेलापन है। भाषा का बंधन, स्थान का बंधन बता दिया, धर्म का बंधन, स्थान का बंधन, भाषा का बंधन, देह के सारा कुछ, फिर देह के भोग का बंधन। एक बताया देह की इच्छा है, एक है देह का भोग। जन्म जन्म आत्मा ने देह ही भोगा है, अभी भी देह ही भोगना चाहती है, अपना तो ठीक दूसरों का भी विकार, ये एक बहुत बड़ा बंधन है जो विकार की श्रेणी में आता है। और ब्राह्मण बनने के बाद में भी यदि देह का आकर्षण, देह के प्रति लगाओ, ये सुंदर ये असुंदर, ये स्मार्ट ये थोड़ा कम स्मार्ट, इसके साथ घूमना अच्छा लगता है उसके साथ घूमना अच्छा नहीं लगता है, इसका चेहरा देखना अच्छा लगता है उसका चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता है, ये सब क्या है? ये भी बंधन ही है, ये देह के भोग के बंधन है, देह की पुरानी स्मृतियों का बंधन। अगला है देह की पुरानी स्मृतियां। यदि ब्राह्मण बनने से पहले जीवन विकारी रहा है, यदि ब्राह्मण बनने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो कि विकार की है, उनकी स्मृतियां, अभी तो नहीं है, अभी विकार कुछ नहीं, अभी पवित्र जीवन है, परंतु विकार की स्मृतियां भी आत्मा को पकड़ के रखती है, क्या उन स्मृतियों से हम परे गए हैं? यदि नहीं तो वो भी बंधन है। और बंधन सारे टूटेंगे कैसे? केवल संकल्प से। मेरे मन को कोई बंधन स्वीकार नहीं, यह एक संकल्प कितना शक्तिशाली है जो सारे बंधनों को ऐसे ही तोड़ देगा, क्योंकि बंधन जो है वो भी एक प्रकार से भ्रम है, बस इल्यूजन भ्रम है, और संकल्प से ही तोड़ा जा सकता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, गहराई में जाने से, संकल्प करने से, महसूसता की शक्ति से सारे बंधनों को तोड़ा जा सकता है। तो ये सारे क्या है? बंधन। कितने हुए? आठ। ये सभी बंधन है एक रीति से, और बंधनों को हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है, कोई भी बंधन हो। ठीक है, ओम शांति।